نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني واذكركم فاشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم. سب دوستوں بزرگوں ساتھیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں 25 کروڑ عوام میں سے ان چند ہزار لوگوں کو اپنے فضل سے رب نے یہ توفیق بخشی کہ اپنے نیک اور صالح بندے اللہ کے محبوب کے محبوب کے پاس کچھ دنوں کے لیے ہمیں ہاتھ دھونے کے لیے موقع فراہم کیا. اس پہ جتنا بھی ناز کیا جائے جتنا بھی فخر کیا جائے اس نعمت پہ جتنا ہی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1997 جنوری میں میں حضرت جی کی خدمت میں پہنچا اور مجھے بات اللہ تعالیٰ نے بڑی جلدی سمجھا دی. شاید پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بات مجھے سمجھا دی. لیکن پوسٹنگز ہوتی رہیں جس کی وجہ سے میں باقاعدگی کے ساتھ کوئی خاص اجتماع نہ اٹینڈ کر سکا سوائے کراچی کے اجتماع کے. جون 2000 میں میں نے پہلی دفعہ باقاعدگی کے ساتھ مظفر آباد میں اجتماع اٹینڈ کیا اور وہ اجتماع کے آخری 2 دن تھے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ فضائل صدقات کے اندر سے حضرت جی نے ہارون رشید بادشاہ کے بیٹے کا قصہ جو کہ 3 سے 4 پیجز پہ مشتمل ہے وہ پڑھ کر سنایا. وہ قصہ میرے دل میں آج بھی اس طرح سے گھر کر گیا ہے کہ جب میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھ میں سستی کاہلی ذکر فکر میں عبادات میں ہو گئی ہے تو میں اپنی فیملی میں بیٹھ کے حضرت جی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس قصے کو صرف پڑھ لیتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ سے بیٹری جو ہے وہ چارج ہو گئی ہے. اسی دوران حضرت جی نے اس سلسلے میں اپنے آنے کے واقعہ کو بیان کیا اور اس میں حضرت جی نے ایک خط کا ذکر کیا جو شیخ المکرم نے جواباً خط آپ کو لکھا تھا. اس خط کو حضرت جی نے لفظ بلفظ زبانی پڑھا تو شروع والے الفاظ تو مجھے کچھ یاد ہیں جس میں السلام علیکم کے بعد حضرت جی نے شیخ المکرم نے فرمایا کہ آپ کا خط ملا آپ کی خیریت کا پتہ چلا. اس کے جواب میں آخر میں حضرت شیخ المکرم نے لکھا کہ بیٹا میں ان بدگانے خدا میں سے ہوں جس کے پاس بیٹھنے والا شخص بدبخت نہیں رہ سکتا. یہ بات حضرت جی نے پڑھی اور اللہ اس چیز کا گواہ ہے کہ بات ہی میرے دل سے نکلتی نہیں ہے اور جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا اس جماعت کے ادنا خادم کی حیثیت میں تو میں نے اپنے پورے خلوص سے جو مجھ پاس علم ہے رب کا دیا ہوا حضرت جی کے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے اللہ کے نبی کی امت کے سامنے ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. وہ آگے قسمت کی بات ہے کہ کون سلسلے میں آتا ہے اور کون رہتا ہے کون نہیں آتا مگر یہ جو آ گئے یہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. ان سے زیادہ دنیا میں لکی نہیں بھی ہو سکتا. تو جس ایک واقعے کی طرف حضرت جی نے مجھے حکم فرمایا ہے وہ میرا ایک ذاتی واقعہ ہے. اس سے پہلے میں ایک اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں. ویسے مجھے خواب بہت کم آتے ہیں. تو یہ 1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مجھے کوئی ایسے چند چیزوں میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا جس سے میرا دل ٹوٹ گیا اور پھر مجھے کچھ رشتہ داروں عزیز و اقارب کی طرف سے کچھ ایسے فون پہ اطلاعات ملی جس سے جو پہلے شکستہ دل ہوتا ہے اس کا دل اور ٹوٹ جاتا ہے. तो मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ उस मस्जिद में बाकायदगी के साथ दरसे कुरान होता है। तो उस दरसे कुरान में जो मौलाना साहब हैं उन्होंने ये फरमाया कि जब इस तरह का मामला हो जाए कि जिनके साथ आप एहसान करें वो आपके साथ इस तरह का सलूक करें, तो फिर वो आप वो करो जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया था। तो इस तरीके से मैं वो दुआ पढ़ने लग गया, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़्ने औज़ु बिका मिनल अज़्ज़े वल कसले औज़ु बिका मिनल जुबने वल बुख़ले औज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व कहर रिजाल। मेरी दुआ काफी लंबी हो गई, मैं देखा कि सारी दुनिया जो है ना उठ के जा चुकी है और मैं अभी भी दुआ में लगा हूं। बस वो एक रिक्कत थी जो मेरे कल्ब पे कारी हुई और उसी कंटिन्यूटी में मैं दुआ मांगता रहा। मैंने अल्लाह ताला से ये बात अर्ज की कि या बारी ताला, मैं एक तरह का हकीर बंदा हूं और जब भी मौका मिला, जब भी तेरी बारगाह में हाजिरी हुई तो मैंने हमेशा तेरे से दुनिया मांगी और तेरी बारगाह ने हमेशा मेरी औकात से बढ़ के मुझे दुनिया अता की। लेकिन आज मैं तेरी पाक जात को तेरी अजमत का वास्ता देके और तेरे प्यारे हबीब सल्लम की उस तल्लकदारी का वास्ता देके सिर्फ एक दुआ आपके सामने पेश करता हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। और वो ये है कि या अल्लाह मुझे, मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को हजरत बेग साहब के गुलामों में शामिल कर ले और इस जमात की खिदमत गुजारों में मेरा नाम लिख दे। तो मैं ये दुआ करता रहा, मैं रोता रहा, मैं अकेला था, कोई बंदा नहीं था। पता नहीं कितना टाइम गुजर गया और मैं मस्जिद को लॉक करके, बाज़ वो मौलाना साहब मेरी ड्यूटी लगाते हैं कि जब आप सबसे आखिर में मस्जिद से निकलते हैं तो यूं लॉक कर दिया करो। तो मैं अपने घर चला गया, मेरा दिल इतना बोझल था कि मैं अपने ऑफिस भी ना गया। मैंने उस दिन 5 सिपारे कुरान पाक की तलावत की क्योंकि और कोई काम मुझे करने के लिए नहीं था, तफसीर मज़हर की थोड़ी सी पढ़ी और मैंने हजरत बैदुल्ला हरार रहमतुल्ला अलैह, हजरत मौलाना जामी रहमतुल्ला अलैह का जो वाक़या हजरत जी ने बड़ी दफा बयान फरमाया और फिर तहरीर तौर पर हमारे पास मौजूद है, वो मैं पढ़ता रहा, बार बार पढ़ता रहा। तो मैं रात को 3:15 बजे एक ख्वाब देखता हूं कि कोई ओट से मुझे आवाज दे रहा है कि आप उठो, देखो कौन आया है। वो मुझे बंदा नजर नहीं आ रहा था, मैं उसने 2-3 दफा जब मुझे आवाज दी तो ख्वाब की बात है कि मैं उठ के बैठ गया। तो मैंने देखा कि बिल्कुल मेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ाते अक़दस तशरीफ़ फरमा है और रसूलुल्लाह सल्लम के साथ हज़रत मौलाना याला यार खान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद बुनियाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जी मुतज़िला वाली मौजूद हैं। तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीना अतर से लगा लिया और फरमाया कि जिस जमात की खिदमत गुजारों में आपने दरख्वास्त की ना वो हमने आपका नाम पहले दिन ही लिख दिया था, जिस दिन आपने किसी एक साथी को सुबह का नाश्ता करवाया था। तो यहां चीजें नियत के साथ चलती हैं और अमल उसकी एक अमली शक्ल है। यकीन माने मैं 3:15 बजे का टाइम होगा या 3:20 का, 10-15 मिनट में वजू ना कर सका, मुझ पर इस कदर दिक्कत आ रही थी कि मुझसे वजू नहीं हो रहा था। खैर मैंने वजू करके जब मसल्ले पे आके खड़ा हुआ, मैं नहीं समझता कि मैं उस दिन तहज्जुद पढ़ सकाऊंगा, इस कदर मेरा दिल पसीज हो रहा था, बार बार मुझे रोना आ रहा था और मैं ऊंची ऊंची आवाज से रो रहा था। चूंकि वो रात का वक्त था इसलिए किसी को इस तरीके से पता ना चला कि मेरे साथ क्या बीती, क्या हुआ। लेकिन जब मैं फजर की सुन्नतें पढ़ के मस्जिद की तरफ गया तो जो मेरे दिल के ऊपर एक बोझ था, मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे सारे गम गलत हो चुके हैं और मेरे सारे दुख जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लम की तशरीफ आवरी से और उनके साथ हजरत जी की तशरीफ आवरी से वो सारे मिट चुके हैं। तो मैं जाते हुए अल्लाह से दुआ करता जा रहा था कि या अल्लाह, हूं तो बंदा لیکن آج کے بعد تیرے سے دنیاوی کوئی سوال نہیں کروں گا. یا اللہ میں آج کے بعد تیرے سے کوئی دنیاوی سوال نہیں کروں گا. یہ پچھلے سال کی بات ہے, میں 2009 میں رینجرز میں تھا, سندھ رینجر میں نوابشاہ میں. تو حضرت جی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے عمرے پہ, تو ہم بھی حضرت جی کو سی آف کرنے ملنے میں بھی گیا. تو جب حضرت جی ایئرپورٹ کے دروازے سے داخلی دروازے سے اندر تشریف لے جا رہے تھے تو میں اکیلا ساتھی تھا جو کھڑا رہ گیا, اور باقی سارے ساتھی سی آف کر کے تو واپس گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے, کوئی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا. تو اس سے پہلے شام کو حضرت جی نے مجھ سے پوچھا کہ اقبال جی آپ نہیں عمرے پہ جا رہے؟ میں نے کہا حضرت جی میں تو عمرے پہ نہیں جا رہا, آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی موقع دے. تو حضرت نے فرمایا جن کو جانا ہوتا ہے وہ جاتے نہیں ہیں, اور یہ سارے بڈھے ٹھہرے مارے والے کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ایک سال بعد اسی ایئرپورٹ سے حضرت جی کے ساتھ الحمدللہ 2010 میں بھی عمرے کے لیے جا رہا تھا. اور اس کے بعد بس یہ حسرت ہی رہی کہ دوبارہ کب ہمارا بلاوا آئے, اور ہم کب اللہ کے گھر کی زیارت کریں, کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ حاضری ہو. مگر قسمت برات کی بات ہوتی ہے کہ ایسا موقع زندگی میں نہ آ سکا. تو پچھلے سال جیسے ہی حضرت جی نے یہاں اعلان فرمایا کہ جماعت اس طریقے سے عمرے پہ جائے گی اور لوگ اس طرح سے پیسے دیں, تو میرا خیال ہے کہ میں ان چند بندوں میں سے ایک ہوں گا جنہوں نے سب سے پہلے پیمنٹ جمع کروائی, اپنی بھی اور اپنی اہلیہ کی بھی, اور اس کے ڈاکومنٹ بھی بچھوا دیے, اور جو جو ہدایات ملتی گئیں اس کے مطابق کرتے گئے اور اپنی تیاری کو مکمل کیا. تو اس طرح ہوا کہ ہم دسمبر کے 1-2 تاریخ کو اپنے گاؤں گئے کہ والدین کو ملنے اور ان سے دعا کروا لیں, میں اور میری مسز اور ایک میری بیٹی. تو وہاں تھوڑی سردی شدید تھی, شاید اس وجہ سے میری مسز کو سردی لگ گئی جس کا میں اندازہ نہ ہو سکا. تو 5 دسمبر کو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہم روٹین کی میڈیسن لینے سی ایم ایچ گئے, کیونکہ 6 تاریخ کو ہم نے سیٹ بک کروا رکھی تھی ریلوے سے کہ ہم پنڈی جائیں گے, 2 راتیں اپنے بیٹے کے پاس سٹے کریں گے, اور پھر حضرت جی کے ساتھ فلائٹ پہ جائیں گے. تو وہاں جب ہم نے میڈیسن لے لی اور جو ہم نے لکھوانا تھا ڈاکٹر سے لکھوا لیا, تو جب میری مسز وہاں سے اٹھنے لگی تو ان کو چکر آیا اور وہ کرسی پہ گر گئیں. تو جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ فوراً اٹھے, انہوں نے چیک ویک کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا سانس ٹوٹ رہا ہے, پانی وغیرہ پلایا, تو انہوں نے کہا کہ فوراً ایمرجنسی میں لے جائیں. انہوں نے اپنے اسٹاف کو ہمارے ساتھ کر دیا ویل چیئر پہ بٹھا کے, تو میں مسز کو لے کے ایمرجنسی میں چلا گیا. ان ڈاکٹرز نے چیک کیا, انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. رات کو 8 بجے ہم نے ان ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ہم ٹھیک ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آؤٹ پاس چلے جائیں اور کل صبح ہم آ جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب جو بھی ہوں گے ان سے ہم اپنا چیک اپ کروا لیں گے. تو ان کی مہربانی, انہوں نے کوئی گھنٹے آدھے کی ڈیلے کے ساتھ ہمیں آؤٹ پاس دیا. رستے میں مسز نے کہا کہ یہ وہاں پہ چپلیں گم ہو جاتی ہیں, یہ جو ہم پہن کے جاتے ہیں, تو ہم 2 جوڑے اس کے اسپیئر جو باٹا کی چپل ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. وہ ہم نے چپل وغیرہ لی, گروسری کا سامان لیا اور گھر ہم خوشی خوشی چلے گئے. 6 تاریخ کو میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جب اپنی ماں کو لے جاؤ, اور جو بھی ڈاکٹر صاحب ہوں گے انہیں کہنا کہ بس مہربانی کریں ہمیں ڈسچارج کر دیں. تو 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بج گئے دن کے, اور ہماری جو وہ ٹرین تھی اس کا ٹائم 4 بجے تھا, اس کا اسلام آباد ایکسپریس اس کا نام ہے. تو میں نے یہ سوچنے لگ گیا کہ وہ ٹرین کا ٹائم قریب ہوتا جا رہا ہے, مسز ابھی آ نہیں رہی, تو وہ کیسے ہم جائیں گے. میں نے بیٹے کو کال کی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ہم ڈسچارج نہیں کر سکتے. میں نے کہا وہ کیوں؟ بیٹے نے کہا کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سانس کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سیریس ہے. تو میں بھی گاڑی میں بھاگا, ڈاکٹر صاحب کو جا کے ملا, بریگیڈیئر صاحب تھے. میں نے کہا کہ سر ہم نے تو عمرے پہ جانا ہے, ہماری تو یہ ٹکٹ ہے, ہماری یہ سیٹیں ہیں. اس نے کہا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک بات ہے, لیکن 2-4 دن 5 دن کے بعد بھی تو جایا جا سکتا ہے. جماعت تو آپ کہہ رہے ہو تو جماعت کا 15 دن کا اسٹے ہے, 16 دن کا تو, یا 20 دن کا, تو آپ 4-5 دن کے بعد چلے جانا. میرے پاس کوئی خیر چارہ نہیں تھا کہ میں کیا کرتا. डॉक्टर साहब के कहने पे हम उधर एडमिट हो गए और फिर 7 तारीख आ गई। 7 तारीख को ना मेरी मिसेज की सेहत बेहतर हुई ना उसको कुछ ज्यादा खराब हुई। तो मुझे जहां तक याद है कि 8 तारीख को फ्लाइट थी, साथ ही यहां से इस्लामाबाद से 8 तारीख को जा रहे थे। तो हमें 2-4 काले यहीं जानने वालों की कि आप किधर हैं, आप किधर हैं। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह मैं तो CMH में हूं और हम शायद कुछ दिन लेट आए। जब 9 तारीख आई तो उसी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी आपको मेडिकल ITC में जाना होगा। हमने कहा सर क्यों, ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी ठीक नहीं है, मैंने यहां जितनी ट्रीटमेंट की है अब मजीद ट्रीटमेंट आपको मेडिकल ITC से मिलेगी। तो मुझे अंदाजा नहीं था, हालांकि आर्मी में रहते हुए हम बड़ी दफा सर्जिकल ITC में मेडिकल ITC में जाते थे, लेकिन जग बीती और आप बीती में बहुत फर्क होता है। हम ITC में चले गए तो जाते ही वहां पे जो भी वो स्टाफ था उनका फीमेल, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये जो जेवर पहना हुआ है ये हम आप उतार के आपको दे रहे हैं, तो आप इसको संभाल लें। ये घड़ी जो पहनी हुई है आपकी मिसेज ने, ये हम आपको दे रहे हैं, इसको संभाल लें। तो वो इस उस वक्त मुझे ना बड़ा मेरे लिए वो शॉकिंग न्यूज थी कि मैंने कहा जी जेवर रहने दें, ये कपड़े भी रहने दें, ये तो 1-2 दिनों की बात है, तो इंशाल्लाह फिर हम ले लेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, SOP ये है कि ना आपकी मिसेज वो कपड़े पहन के यहां रह सकती हैं और ना ही ये वाला जो है चीज है ये आपने लेनी है। वहां से मुझे ना थोड़ी फिक्र लग गई कि कोई मसला ज्यादा खराब है। फिर मैं उस डॉक्टर साहब के पास गया, उसको मैंने कहा कि सर ये मसला है। उसने कहा जी मैं आई एम आउट ऑफ इट, तो अभी जो उधर कर्नल फैसल है वो देखेगा, ये उसका शोभा है और उसी को पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कर्नल फैसल का पता किया तो उन्होंने कहा जी वो तो कोई अपना एग्जाम देने हायर स्टडी का वो इस्लामाबाद चले गए, 2 से 3 दिन के बाद आएंगे। अब मेरी मिसेज की हालत इस तरह से खराब होना शुरू हो गई कि जो यहाँ पे डॉक्टर हजरात बैठे हैं या जिनको इस बीमारी से अल्लाह माफ करे वास्ता पड़ा है, वो देखते हैं कि पहले जिसको सांस नहीं आ रहा होता सही है उसको वो नेजल लगाते हैं, उसके बाद उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा प्रेशर वाला वो मास्क पहना देते हैं, फिर अगर उससे भी काम नहीं चलता तो वो फिर उसके प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, यहां तक कि वो प्रेशर को 100 डिग्री पे ले जाते हैं और उससे वो देते हैं। अगर यहां भी आराम ना आए तो फिर वो मरीज को परमानेंटली वो कर देते हैं, जैसे मरीज ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। तो उससे पहली स्टेज थी, हम डॉक्टरों के पीछे भागना शुरू कर दिया और कोई डॉक्टर हमारी बात नहीं सुन रहा था या हमारे तरह से मेरी मिसेज को आराम नहीं आ रहा था। तो मैंने फौरन इस सारे वाक्य की इतला हजरत जी की खिदमत में अर्ज की और अवैस साहब जो है अजगर रहमान साहब के बेटे, वो मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहे, अल्लाह उनको इसकी बहुत अच्छी जजा दे, और एहसान भट्ट साहब उनको अल्लाह बहुत अच्छी जजा दे। तो मैंने अपना वाक्या हजरत जी की खिदमत में सारा बता दिया कि हजरत जी अभी तो हम 4-5 दिन के बाद भी आपके पास नहीं आ रहे और मिसेज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खैर जब हम 4th-5th दिन हुआ ITC में तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये कुछ फॉर्म है उसके ऊपर आप साइन कर दें। तो उसका बहुत क्लियर मतलब हम समझ रहे थे कि ये फॉर्म जो हमसे साइन करवाए जा रहे हैं ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि मरीज जो है वो खुदा न खास्ता रिकवर की तरफ नहीं जा रहा। तो मैंने वो फॉर्म खैर टूटे हुए दिल के साथ साइन कर दिए और वो अल्लाह किसी से ऐसे फॉर्म ना साइन करवाए। तो उस वक्त मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि फलां जगह कुछ जेवर पड़ा है और कुछ पैसे पड़े हैं, तो आप वो संभाल लें और खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई ऐसा काम हो गया तो मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना, और मेरे इस वाक्य की इतला जैसे भी हो चुके सके हज़रत बेग साहब की खिदमत में देना, फिर जिस तरह वो फरमा में उस तुके से मेरे कफन दफन का मदबस कर देना। ये बातें कहना बहुत आसान होता है, जिसके साथ बीत रही होती है, जिसका लाइफ पार्टनर उसको हर तरह की सर्विसेज देने वाला एक साथी, उसके दुख का, उसके सुख का, उसके गम का वो उससे लैदा हो जाता है, तो वो बहुत मुश्किल मरहला होता है। मैं बार बार गौरमान साहब तक ये पैगाम पहुंचाऊं अवैस साहब के थ्रू, और बार बार एहसान भट्ट साहब को मैं अपनी ये अर्जगुजार करूं, तो एहसान भट्ट साहब कहेंगे हजरत जी तक आपकी इतला पहुंची हुई है, हजरत जी को सारी बात का पता है। और मुतद्दद बार हजरत जी की इतनी शफकत कि हजरत जी ने मुतद्दद बार मेरे से बात भी की, मेरा हौसला भी बढ़ाया। मगर सूरत हाल जो है ना वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और सूरत हाल डॉक्टर्स के कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। फिर ऐसे हुआ कि डॉक्टर्स ने हमें ना कह दिया कि मरीज आ रहा है, लिहाजा आप अपना कोई जो भी बंदोबस्त करना है वो आप उसकी तैयारी पकड़े। वो ऐसा वक्त था कि मुझे जिंदगी में, मैं सेहतमंद रहा हूं अल्लाह का शुक्र है, ना मुझे कभी बीपी अप हुआ है, ना मेरा बीपी कभी डाउन हुआ है। वो वाहिद दिन था कि आईटीसी में जो बीवी है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और मैं एक दूसरे वार्ड में बीपी लो होने की वजह से, और मेरी एक अद बेटी, वो हम दूसरे बेड पे लेटे हुए थे। और बेबसी का ऐसा आलम था कि कोई चीज हमें नजर नहीं आती थी, ऐसे था कि जैसे सारा जहान हमसे खो लिया गया है। तो हमने वहां पे मसले बिछा लिए और डॉक्टरों से हम बिल्कुल किनारा कश हो गए। तो मेरा एक कोस्टमेट है वो कहीं जीओसी था, उसको पता चला, वो वहां आया, उसने वहां के कमांडेंट को बताया, उसकी वजह से वो कमांडेंट मेरे भी जानने वाला बन गया, वो भी मेजर जनरल रैंक का अफसर था। तो वो इस वजह से बार बार वो डॉक्टर हमारे पास आते थे, लेकिन हम बच्चे, मैं खुद सीएमएच के अंदर मसले बिछा के जो कमरा हमें मिला हुआ था आईटीसी के बाहर, तो हम बस अपनी नमाज में मगन थे, नफल पढ़ रहे थे, अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। डॉक्टर्स के पीछे पहले हम भागते थे और डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनते थे, लेकिन जब हमने अल्लाह की तरफ रजू किया तो डॉक्टर हमारे पास आके छह छह चार चार आठ आठ दो दो डॉक्टर खड़े रहते थे, और हमें कोई पता नहीं होता था ये कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। फिर और सूरत हाल बिगड़ गई और हम बिल्कुल नाउमीद हो गए। मुझे गौने मान साहब ने कोई नफल बताया मैं पढ़ने के लिए, उन्होंने आप लोगों को भी बताए होंगे, वो रात के 2 बजे से 3 बजे के दरमियान पढ़ने होते हैं कि जब बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आए तो यूं आप नफल पढ़ें। मैंने उनको पहले भी बड़ी दफा पढ़ा और हमेशा अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई, तो मैंने आखिरी चाराकार के तौर पर बच्चों को भी कहा और खुद भी वो नफल पढ़ने शुरू कर दिए। तो मुझे ना एहसान भट्ट साहब की कॉल आई, तो मैं चूंकि उसमें एक रकत में 100 दफा से ज्यादा सूरह इखलास को पढ़ना होता है तो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो फिर आपकी कैफियत भी ठीक ना हो तो और ही लंबी हो जाती है। मैं जब नमाज से फारिग हुआ तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 का टाइम था, और शायद सऊदी अरब में वो 12:50 का टाइम था। तो मेरी एहसान भट्ट साहब से बात हुई, तो एहसान भट्ट साहब ने मुझे मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? कि भाई साहब आप परेशान ना हों, इंशाल्लाह हजरत जी ने फरमाया कि आपकी मिसेज अपने पांव पे चल के घर जाएगी। मैं इस कदर खुश हुआ, और इस कदर मेरे दिल के अंदर ये यकीन के साथ वो चीज बैठ गई कि इंशाल्लाह मेरी मिसेज ठीक हो जाएगी। हमने ड्यूटियां लगा रखी थी कि इस वक्त 2 बच्चे 3 बच्चे रिश्तेदार 3-4 रहेंगे, फिर दूसरी शिफ्ट जाएगी, फिर तीसरी शिफ्ट जाएगी। मेरा एक बेटा है जो आर्मी में कैप्टन है, और हजरत की महजूतियों के सदके वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अकेडमी जिसका नाम रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडर्स है, यूके से पढ़कर आया है, और उसने अजहर की दुआओं की बरकत से पूरी दुनिया को टॉप किया है। तो वो मुझे कॉल कर रहा था सीएमएच से, तो हमने फोन, ये फोन भी उसी वक्त आपको अच्छे लगते हैं जब कोई हालात वालात आपकी फेवर में चल रहे हों, ऐसे मुश्किल वक्त में कोई फोन अच्छा नहीं लगता, कोई खाना कोई चीज। तो उसने मुझे फोन किया कि पापा देखो देखो क्या हो गया। मैं कह जी आप फोन नहीं सुन रहे, पीटी सेल पे कॉल आई। मैं कह बताओ तो सही क्या हुआ। उसने कहा कि मेरी माँ ठीक हो गई है। मैंने कहा कि कैसे। कहते आप मोबाइल ऑन करें। तो वो मोबाइल पता नहीं साइलेंट पे था या क्या था, तो मैंने व्हाट्सएप पे जब बेटी की कॉल अटेंड की तो वो मेरी मिसेज को चेयर पे डाल के डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक छोटी नेजर लगी हुई और बाहर खुली आबो हवा में वो ले जा चुके थे। हमें इस कदर खुशी हुई। नाश्ता बन रहा था, नाश्ता तैयार हो रहा था, हमें कुछ ना सूझा और हमने गाड़ियां भगाई और जितने रिश्तेदार अजीज थे आए हुए, माँ बाप बहन भाई, हम आके वहां पे पहुंच गए। और उस तक मिसेज वापस जा चुकी थी क्योंकि वो इस तकलीफ की वजह से 20 मिनट से ज्यादा देर तक वो ना ठहर सकी। मैं वहां गया, मैंने कहा जी कर्नल फैसल से मिलते हैं जिसने इसका इलाज किया है। मैं कर्नल फैसल को मिला, वो बड़ा बिजी रहता है, बड़ी मुश्किल से उसने मुझे टाइम दिया। तो मैंने कहा जी मुझे बताएं कि क्या हुआ। वो मुझे कहता है उसमें ब्रिगेडियर जिले हमायों मिर्जा वो भी आ गए। मैं वो मुझे कहें कि आप बताओ कि क्या हुआ। तो मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता क्या हुआ है। तो ये रात ही रात में एक मरीज कैसे ठीक हो गया। तो कहे भाई हमने तो कुछ नहीं किया, इतना हाई प्रेशर हम उनको दे रहे थे। तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये मरीज तो ठीक है, तो मैंने उसको कहा हाई प्रेशर जो है ना उतार दो, तो उससे जो लो प्रेशर होता है वो लगा दो, लो प्रेशर मास्क लगा दो। कहते मैं उस वक्त 7-8 मरीज होते हैं टोटल ITC में, उनको देखा तो ऐसे मेरे दिल में आया कि ये तो मरीज ठीक है, तो इसका ये जो लो प्रेशर मास्क है ये भी उतार दो। तो मैंने, मेरा स्टाफ डर रहा था तो मैंने खुद लो प्रेशर मास्क भी उतार दिया। तो मैंने कहा कि नेजल लगा दो, तो वो नेजल लगा दी। कहते फिर मैंने आपके बच्चों को बुलाया, बेटी को बेटे को, और उनको मैंने ये बात कही कि बेटा मुझे ये बता दो कि वो हस्ती कौन है जिसकी दुआ की बरकत से आपकी माँ मौत के मुंह से वापस आई है। तो मैं भी उधर पहुंच गया, वो और भी बहुत सारे डॉक्टर आ गए। तो वो आज भी मैं CMH में जाऊं तो वो कहीं मिल जाएं जिससे मेरे साथ हो, तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस सदी का कोई मौजजा देखना है तो इस औरत को देख लो जो इनके मुर्शिद की दुआ की बरकत से ठीक हुई। थोड़े कहे को ज्यादा जानिएगा और अल्लाह से दुआ गो रहे। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत बेग साहब के जूतियों के साथ जो लगने वाली मट्टी है, अल्लाह हमें उसका गुलाम बना ले और ये हमारी तकदीर में रब ये लिख दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।